आदरणीय उर्मिला बेन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको आध्यात्मिक ज्ञान में बाल्यकाल से ही रुचि थी, समाज के चारित्र्य और नैतिक पुनर्निर्माण में भी आपका बहुत रुचि था, इसलिए भगवान ने उम्र 13 ही वर्ष में ही आपको चुन लिया और आप बहुत जल्दी ही समर्पित होकर 1986 में इस ईश्वरीय सेवा में लग गए। आप एक मेधावी छात्रा थी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में आप लग गए और आप विशेष इस शांतिवन ज्ञानामृत प्रेस में ज्ञानामृत संपादन और त्रैमासिक पत्रिका हरियाली के संपादन में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप एक कुशल वक्ता हैं, अच्छे लेखिका हैं, अनेक राष्ट्र सम्मेलनों में आप अपने अमूल्य वक्तव्य दे चुके हैं। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बेन जी, जिसका हम पुनः स्वागत करते हैं। स्वागत है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल प्यारे बाबा की मुरली हम सब ने सुनी। बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया, मन जीते जगत जीत। साकार मुरलियों में बाबा कहते हैं बच्चे माया जीते जगत जीत। हमारा मन एक तरफ तो आत्मा की एक शक्ति है और दूसरी तरफ इंद्रियों के साथ इसका बहुत नजदीकी संबंध है। इंद्रियां बाह्य जगत के साथ जुड़ी हुई हैं और बाह्य जगत में आंखों से जो दृश्य देखे जाते हैं, जो शब्द सुने जाते हैं, उनका सीधा संबंध हमारे मन या उनका सीधा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए मन की नेचर है जो देखा जो सुना तुरंत उसके प्रभाव में आना। अब उस प्रभाव से मन को निकालने का काम करती है बुद्धि और फिर जब बुद्धि ने मन को प्रभाव से निकाला और बुद्धि के अनुसार कर्म हुआ तो वो हमारा संस्कार बन गया। ये तीनों शक्तियां इतना सूक्ष्म रूप में काम करती हैं कि पता ही नहीं पड़ता, बहुत अंदर उतर करके फिर हम इन तीनों को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे किसी फल में विटामिन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, लेकिन फल को देखने से तो पता नहीं पड़ता ना कि मिनरल्स कहाँ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ हैं, विटामिन्स कहाँ हैं। इसी तरह से कौन सा कर्म मन का है, कौन सा बुद्धि का है, संस्कार कहाँ प्रभाव डाल रही हैं, एकदम देखने से तो पता नहीं पड़ता, लेकिन जब हम अंतर क्रिया को एनालाइज करते हैं, जब अपने मन की सूक्ष्म गति के ऊपर ध्यान देते हैं, बुद्धि पर ध्यान देते हैं, तो मालूम पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा कहीं सड़क पे रो रहा है 12-14 वर्ष का और हम सड़क से जा रहे हैं, हमने उसको रोते हुए देखा तो मन की नेचर है एकदम दयावान होना, इमोशनल होना, किसी रोते हुए को देख करके दुखी होना। अब मन ने एक सेकंड में ऐसे संकल्प किए, लेकिन फिर बुद्धि अपना काम करती है, वो कहेगी नहीं नहीं देखो, इससे पूछो ये क्यों रो रहा है। अब मान लीजिए वो बच्चा कहता है कि मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया और अब मैं बेरोजगार हो गया, अब मैं क्या करूंगा जीवन में, क्या खाऊंगा। अब बुद्धि ने जज किया कि सचमुच इसको ये वाली तकलीफ है। और जब बुद्धि जज करती है तो हमारे स्टोर में जो संस्कार है वो संस्कार एकदम ऊपर आती हैं और वो संस्कार फिर मोटिवेट करते हैं हमको। मान लीजिए स्टोर में संस्कार है मदद करने का, तो वो संस्कार एकदम इमर्ज होगा और बुद्धि को मोटिवेट करेगा कि वो उस व्यक्ति की मदद करे। और अगर हमारे स्टोर में संस्कार है इग्नोर करने का, तो वो बुद्धि को मोटिवेट करेगा कि इग्नोर करो, आज की दुनिया में ये सब तो होता ही रहता है, तुम अपना काम करो। तो बुद्धि इग्नोर करेगी और इस तरह से व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। और अगर वो मदद करेगा तो मदद का संस्कार फिर उसमें स्टोर हो जाएगा। तो सारा दिन हमारे अनेक प्रकार के संस्कार सिर उठाते हैं और अनेक प्रकार के संस्कार स्टोर में एकत्रित होते हैं। ये प्रक्रिया सारा दिन चलती रहती है। अब मनुष्य के जो संकल्प हैं वो कैसे उठते हैं? हम कहते हैं कि बाह्य जगत को देख करके संकल्प उठते हैं, क्योंकि बाह्य जगत से इंद्रियां जुड़ी हैं और इंद्रियां किसी भी दृश्य को, आवाज को अंदर भेजती हैं और मन उसको ग्रहण करता है। लेकिन मन जब उनको ग्रहण करता है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, ये भी हमारे संस्कारों के अनुसार होता है। नहीं तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग एक ही चीज को देखते हैं लेकिन सबकी रिएक्शन एक जैसी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक गाय खड़ी है और उसको तीन लोग देखते हैं। अब पहले व्यक्ति ने गाय को देख करके सोचा कि गाय में तो 33 करोड़ देवताओं का निवास है, इसलिए गाय पूजनीय है, गाय माता है, मैं गाय को नमस्कार करूं। दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि ये गाय तो बड़ी दुधारू है, तो अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी घर की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। और तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि ये गाय तो बहुत मोटी तगड़ी है और इसका मालिक भी कहीं नहीं है, अगर मैं इसे ले जाऊं चुपचाप और इसे बेच दूं किसी बुच्चर को तो अभी अभी मुझे 500-700 रुपए मिल सकते हैं। तो गाय तो एक ही है लेकिन तीन लोगों के तीन तरह के संकल्प क्यों हैं, तीन तरह के विचार क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर स्टोर में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीन प्रकार के संस्कार हैं। तो सतोगुणी संस्कार जिसके होंगे उसका संकल्प अपने ढंग का, रजोगुणी का अपने ढंग का और तमोगुणी का अपने ढंग का। अब बाह्य जगत को बदलने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि मेरा मन चंचल होता है बाह्य जगत को देख के, चीजों को देख के, वस्तुओं को देख के। क्यों चंचल होता है? क्योंकि अंदर वो प्रोग्राम है तो वो कैच करता है। जैसे कंप्यूटर में मान लीजिए अपन कैनन का कैमरा जोड़ते हैं लेकिन कैनन का प्रोग्राम कंप्यूटर में नहीं है तो वो उसको कैच ही नहीं करेगा। हम लाख कोशिश कर लें कैमरे के फोटो कंप्यूटर में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि कंप्यूटर में ऑलरेडी कैनन का प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, प्रोग्राम देते हैं उसके बाद वो कैच करता है। तो हमारे अंदर अगर प्रोग्राम इंस्टॉल होगा तो बाह्य जगत की चीजों को देख करके मन उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर चंचलता की बातों को देख के चंचल होगा, क्रोध की बातों को देख के क्रोध करेगा या इस प्रकार की रिएक्शन करेगा। अगर अंदर चंचलता है ही नहीं, क्रोध इंस्टॉल्ड है ही नहीं, तो बाह्य जगत में जो मर्जी होता रहे उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें बाह्य जगत को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आंतरिक संस्कारों को चेक करके चेंज करने की जरूरत है। और जब अंदर के परिवर्तित हो जाएंगे, सतोगुणी बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, तो बाह्य जगत में हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, बाह्य जगत का असर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो आंतरिक संस्कार है, इनका हमको मालूम पड़ गया कि मेरा मन चंचल है, मेरा मन नेगेटिविटी में जाता है, या मेरा मन एक बात को बार बार सोचता है, व्यर्थ बातें सोचता है, मालूम पड़ गया। अब मालूम पड़ गया तो उसको चेंज कैसे करें, उसको हटाएं कैसे? लौकिक दुनिया में तो जब हमको मालूम पड़ जाता है कि ये चीज खराब है तो उसको हम पकड़ करके फेंक देते हैं, या लिखत खराब है तो उसको मिटा देते हैं। कागज के ऊपर लिखा हुआ मिटाना तो बहुत सरल है, लेकिन मन के ऊपर जो लिखा गया उसको बार बार मिटाना, फिर इमर्ज हो जाना, फिर मिटाना, मिटाने में बहुत मुश्किल लगती है। जैसे मान लो किसी टोकरे में बहुत सारे फल पड़े हैं और एक फल सड़ गया, तो उस एक फल की जो बैड स्मेल होगी वो सारी फलों की खुशबू को ढक देगी। तो मन का जो एक नेगेटिव थॉट बार बार पैदा होता है, या जो एक संस्कार या संकल्प या बात बार बार इमर्ज होती है, वो हमारी सारी अच्छी बातों को दबा देती है। अब टोकरे में से फल को उठा के फेंकना तो सरल है, लेकिन जो बात बार बार रिपीट हो रही है, क्या हम उसको ऐसे उठा के फेंक सकते हैं? वो सूक्ष्म प्रक्रिया है, उसको या तो हम अच्छी बात से रिप्लेस करें, या जैसे बाबा कहते हैं बिंदु लगाएं, अटेंशन दें, जब भी इमर्ज हो बिंदु लगाएं। और उसमें भी हमको ये चेक करना है कि उस बात का फोर्स कितना है। अगर उस बात का फोर्स इतना है कि वो जैसे पत्थर पर लकीर है, थोड़ी जास्ती अटेंशन और मेहनत की बात है। अगर वो बालू पर लकीर की तरह से है, थोड़ा कम। और अगर वो पानी पर लकीर की तरह से आती है तो बहुत ही कम। तो पहले चेक करना है, उसकी इंटेंसिटी को चेक करना है, और उसके बाद चेक करने के लिए, चेंज करने के लिए उसी प्रकार की योजना बनानी है। जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले बीमारी को चेक करता है, वो देखता है कि इसको पेट दर्द बहुत अधिक है, तो जो खुराक देगा बोलेगा भाई इसको दिन में 10 बार खाना। वो देखता है कि मीडियम है तो बोलेगा इसको 5 बार खाना। वो देखता है कि ये तो हल्का सा है तो बोलेगा बस 1 बार खा लेना, ठीक हो जाएगा। तो मेरी जो बीमारी है वो कैसी है? व्यर्थ सोचने की, पास्ट में जाने की, चिंता करने की, अनुमान लगाने की, कैसी है? अगर बहुत अधिक है तो मुझे जो सॉल्यूशन है वो दिन में 10 बार भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मीडियम है तो 4-5 बार अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हल्की है तो 1-2 बार अप्लाई करने से भी काम चल जाएगा। तो पहला काम है मैं अपने आप को देखूं, चेक करूं, जज करूं कि इस मन को भटकाने वाले, मन को खींचने वाली संकल्प बातें कौन कौन सी हैं, कब कब आती हैं। ऐसा भी होता है जैसे किसी व्यक्ति को आवेश आता है, हमेशा नहीं आता है। वो देखता है कि जब मैं काम पर जाता हूँ, मुझे वर्कर्स से काम कराना है, तब मुझे आता है। या जैसे कोई महिला है, समझती है बहुत घर में मेहमान आ गए, बहुत काम करना पड़ता है, तब आता है। या जैसे कोई बच्चा है देखता है कि बहुत होमवर्क हो गया तो उसको इरिटेशन आती है, आवेश आता है, कब कब आता है, तो डॉक्टर भी क्या कहेगा कि जब आपको लगे ना कि आपको थोड़ा फीवर हो गया है, जब आपको लगे कि आपको थोड़ी खांसी ज्यादा आ रही है, तब आप ये गोली 10 मिनट पहले खा लेना तो खांसी नहीं आएगी। तो हमको मालूम होता है कि इस वक्त इस बीमारी का जोर होता है। तो जिस वक्त जिस संस्कार का असर पड़ता है, कर्म करते हुए संकल्प उस प्रकार के चलते हैं, तो उसे थोड़ा सा पहले हम उस सॉल्यूशन को अपना लें तो वो जो इमर्ज होती है बात वो नहीं होगी। तो सॉल्यूशन क्या है? अब बाबा कहते हैं बच्चे आपके पास समर्थ संकल्पों का स्टॉक होगा तो फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर हमारे पास शक्तिशाली संकल्पों का स्टॉक है तो जैसे ही व्यर्थ आएगा फुल स्टॉप लगेगा। अब शक्तिशाली संकल्प हमें कहां से मिलेंगे? हमारा जो सॉल्यूशन है, जो दवाई है, वो बाबा की मुरली है। हर समस्या का समाधान है, हर बीमारी के लिए इलाज है। समर्थ संकल्पों का बहुत बड़ा स्टॉक है। इसलिए थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा था कि पहुंचेंगे वो जो लगन से पढ़ेंगे, नियम प्रमाण नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में गीता नियम प्रमाण पढ़ी जाती है, बाबा ने कहा ऐसे पाठ करने प्रमाण नहीं, लेकिन लगन से, उमंग से, प्यार से, खुशी से, भावना से। तो बाबा ने कहा इस लाठी के सहारे आप अपने घर तक और अपनी राजधानी तक पहुंच जाएंगे। तो जितना दिल और जिगर से मुरली से प्रेम होगा और मुरली की बातें बार बार मन और बुद्धि में रिपीट होंगी, चिंतन में आएंगी, वर्णन में आएंगी, अनुभव में आएंगी, एकांत में बैठ करके एक एक बात का अनुभव करेंगे तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। पुराने संस्कार निकलते जाएंगे और उसकी जगह नए भरते जाएंगे। जैसे मम्मा उदाहरण देती थी कि बाल्टी में अगर गंदा पानी भरा हो और अपन ऊपर से स्वच्छ जल का नल चला दे तो अपने को बाल्टी खाली मेहनत से नहीं करनी, अपने आप पुराना जल निकल जाएगा और नए वाला उसमें भर जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम मनन करके, चिंतन करके, स्मरण करके नई नई बातें अंदर भरेंगे तो जो 63 जन्मों की पुरानी बातें हैं वो निकलेंगी और उनसे कनेक्टेड जो नेगेटिव थॉट्स पैदा होते थे वो अपने आप खत्म होंगे। नेगेटिव थॉट्स मन को कमजोर करती हैं। अधिक विचार, चंचलता के विचार, एक ही बात को बार बार रिपीट करना, ये मन को कमजोर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को 2 मास बाद यात्रा करनी है, 2 मास बाद, लेकिन उसको आज से चिंता लग जाती है कि मैं जाऊंगा, कौन छोड़ के आएगा, भीड़ ना हो, सामान ज्यादा है, चढ़ पाऊंगा। अब प्लेटफॉर्म पे उसको जाना है 2 मास, लेकिन वो आज ही प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ गया। अब ये क्या है? अब ये मन को जरूरत से अधिक काम देर दिया गया, बोझिल किया गया, जिस बात की जरूरत नहीं है वो चिंतन का बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया, बोझिल हो गया, चिंता कर रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, थोड़ा थोड़ा भयभीत भी हो रहा है। अब यहाँ हम बाबा की मुरली की पॉइंट क्या यूज करेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे वर्तमान में रहो, जिस समय जो बात, जो काम, जो सेवा सामने है उसको देखो, उसका चिंतन करो। अगर आज आपके सामने जो बातें हैं उनको आपने ठीक कर लिया, तो कल जो बात आएगी आप उसको भी ठीक कर लेंगे, परसों वाली को भी, और दो मास बाद जो आएगी उसको भी आप ठीक कर लेंगे। जब आपका वर्तमान ठीक है, आपको वर्तमान को ठीक रीति से निभाने की आदत है, तो दो मास बाद भी जो बात सामने आएगी वो भी ठीक रीति से निभ जाएगी, आप उसकी चिंता अभी क्यों करती। इसी तरह से कई बार मन पास्ट में जाता है, लॉन्ग लॉन्ग एगो ये घटित हुआ था। जैसे एक बार मुझे याद है, मैं कहीं गई थी तो एक पिकनिक हो रही थी, एक महिला फ्रूट नहीं खा रही थी, तो हमने उसको पूछा कि तुम फल क्यों नहीं खाती। उसने कहा मुझे आदत ही नहीं है, मैंने खाया ही नहीं है। तो उसको पूछा गया कि आखिर भी बात क्या है, डॉक्टर तो कहते हैं फल बहुत खाओ। तो उसने कहा कि जब मैं इस घर में पहली बार आई थी, ज्वाइंट फैमिली था, तो घर के जो बड़े लोग थे वो भवों को फल नहीं देते थे खाने के लिए, या तो घर के बच्चे फल खाते थे, दूध पीते थे। भवों को ना फल खाने को दिया जाता था, ना दूध पीने को दिया जाता था। तो मैंने पूछा घर के बड़े लोग हैं, बोला नहीं वो तो कब के शरीर छोड़ गए। अब एक परिस्थिति थी 20 साल पहले, वो बदल गई, घर के बड़े लोग चले गए, अब ये घर की मालिक है। लेकिन उस विचार को ये अभी तक भी पकड़ के बैठी हुई है और उसी के अनुसार चल रही है। नहीं तो उसको चेंज कर लेते, समय अनुसार अपने को बदल लेते, तो वो परिस्थिति थी तो ठीक है, तब अनुकूल नहीं थी बात, लेकिन अब तो अनुकूल है, मैं अपने आप को मोल्ड कर लूं। तो कई बातें हम इस तरह से पुरानी पकड़ के बैठे रहते हैं। कोई दुख की बात हुई थी, किसी ने कोई कड़वा शब्द बोल दिया था, या घर में कोई दुख देने वाला व्यक्ति था, या जैसे किसी की कोई सौतेली माँ थी, या किसी का कोई बहुत क्रूर संबंधी था, उसने कोई दुख दिया, अत्याचार किया, उन बातों को हम अभी तक बार बार मन में दोहराते हैं और उन नेगेटिव बातों को दोहराते दोहराते उनके अनुसार हमारी पर्सनैलिटी भी नेगेटिव बन जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे रात गई और बात गई। जैसे हम कहते हैं कि बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, बासी रोटी खाने से शरीर बीमार हो जाता है, तो इसी तरह से बाबा कहते हैं बासी बातें, बासी विचार, पुराने विचार, पास्ट के विचार, वो भी तो हमारी आध्यात्मिक सेहत को खराब करती है, मानसिक सेहत को खराब करती है। तो बाबा हमें क्यों मुरली में रोज नए विचार देते हैं? हम कल की मुरली भी नहीं पढ़ते। अगर कोई बहन पिछले दिन की मुरली सुनाए तो हम कह देते बहन जी ये तो कल सुनी थी, आज की मुरली सुनाओ ना। लेकिन अगर कोई कल की बात सुनाए तो, परसों की बात सुनाए तो, क्या हम तब भी कह देते हैं कि ये बात कल की सुनी हुई है? उसके लिए भी तो हमें कहना चाहिए ना कि ये बासी बात है, पुरानी बात है। जैसे कोई भी व्यक्ति पुरानी चीजें यूज नहीं करता, आप देखेंगे नए जमाने के साथ नए फैशन की चीजें सब लोग यूज करते हैं। पुराने जमाने में काशी के बर्तन थे, पीतल के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे, आज किसी के घरों में ऐसे बर्तन नहीं है, सब लोग प्लास्टिक के रखते हैं, स्टील के रखते हैं, कांच के भी रखते हैं। तो जैसे हमने पुराने जमाने के बर्तन छोड़ दिए, पुराने जमाने की बातें भी छोड़ देनी चाहिए। पुराने जमाने के कपड़े भी किसी के घर में नहीं है, कोई घाघरा नहीं पहनता पुराने जमाने की तरह से, बहुत कम लोग होंगे जो धोती पहनते होंगे कपड़े पहनने। पुराने जमाने जैसे घर नहीं बनाते, कोई झोपड़ी नहीं बनाता अभी सरकंडे की, कोई बहुत गरीब मजबूर हो तो अलग बात है, नहीं तो सब लोग पक्के घरों में रहना चाहते, सीमेंटेड घरों में रहती। तो बाबा कहती हैं कि जब आपको पुरानी चीजें पसंद नहीं है तो पुरानी बातें क्यों पसंद है, पुराने संस्कार क्यों पसंद है, पुरानी आदतें क्यों पसंद है, पुरानी नेचर क्यों पसंद है? बाबा नया मिला, ज्ञान नया मिला, परिवार नया मिला, संबंध नए मिले, तो हमारी संकल्प भी ये जो कुछ नया मिला, ये जो नया संगम युग है और आने वाली नई सतयुगी दुनिया है, उससे कनेक्टेड हमारे विचार चलने चाहिए ताकि हम उस नवीनता को जीवन में धारण करें, नए बने, नए विचारों वाले बने, नया जीवन बने। इसलिए नवीन बनेंगे, पुरानी बातों को छोड़ देंगे। कई बार हम एक ही विचार को बार बार रिपीट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बाजार में गन्ने का रस निकालने वाले लोग होते हैं, जब वो गन्ने को मशीन में एक बार डालते हैं तो गन्ने का काफी रस निकलता है, लेकिन रस निकले हुए उस छिलके को दोबारा डालते हैं तो थोड़ा सा रस निकलता है, तीसरी बार डालते हैं तो बिल्कुल दो बूंद निकलेगा, चौथी बार तो उसमें से रस निकलता ही नहीं। तो जो बातें हैं वो भी ऐसे ही हैं। जब हम किसी भी बात को एक बार सुनते हैं, सुनाते हैं, दोहराते हैं तो उसमें से रस निकलता है, लेकिन उसी बात को जब हम दोबारा रिपीट करते हैं आनंद नहीं आता, तीसरी बार मन में दोहराते हैं तो जैसे छिलकों जैसी बात हो जाती है, छिलके को आप चूसते रहो उसमें ना मिठास है ना रस है, और ही वो मुख को घायल करेगा। तो जो बार बार बातें मन में रिपीट की जाती है वो भी छिलकों की तरह से हो जाती है, उनमें ना रस है ना आनंद है ना कोई फायदा है, वो छिलके तो फेंकने वाली चीज है। इसी तरह से बात में एक बार आनंद आता है फिर उस बात को छिलके की तरह से छोड़ देना चाहिए। अब कई बातें ऐसी हैं जिनको बार बार सुनने से आनंद आता है, वो कौन सी है? जैसे हम कोई प्रेरणादायी बात सुनते हैं, कोई अच्छा स्लोगन पढ़ते हैं, बाबा मम्मा के दादियों के जीवन चरित्र सुनते हैं, ये उन पे लागू नहीं होती है, ये केवल व्यर्थ बातों पे लागू होती है, व्यर्थ विचारों पे लागू होती है, उनको छिलका समझ करके फेंक देना चाहिए। और जो सुखदायी बातें हैं जिन्हें सुन करके रस आता है, हजार बार सुन लो तो भी उनका रस बना रहता है, वो बातें हमें बार बार सुननी चाहिए। और ये जजमेंट भी हमारी बुद्धि करेगी कि ये व्यर्थ है, छोड़ने वाली है, और ये काम की है, ये संभाल के रखने वाली है। कई बार हम भाई बहन ये भी शिकायत करते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है, क्योंकि योग लगाने के लिए तो मन की जरूरत है। वो भक्ति में वो बात सुनाते हैं कि उद्धव ने गोपियों को कहा कि तुम अपना मन भगवान में लगाओ, तो गोपियों ने कहा उद्धव मन ना ही दस बीस, मन दस बीस नहीं है, एक ही है हमारा, और वो कृष्ण जी के साथ चला गया, तो अब हम कौन से मन को ईश में लगाएं? तो मन हमारा एक ही है। अब हम कहते हैं कि योग नहीं लगता, तो योग तो लगता है लेकिन भगवान के साथ नहीं लगता, किसी और के साथ लगा हुआ है, या तो किसी वस्तु से लगा हुआ है, या वैभव से लगा हुआ है, या व्यक्ति से लगा हुआ है। अब यहां भी हमको चेक करना है कि ये मन किसके साथ लगा हुआ है। जैसे कई बार हम बच्चे को ढूंढते हैं, भाई उसका टीचर आया है, वो होमवर्क करे तो ट्यूशन पढ़े, तो ढूंढते हैं भाई कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया, तो हम देखते हैं कि शिव बाबा के साथ मन को लगाना है, शिव बाबा की पढ़ाई पढ़नी है, मन को ढूंढते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो कहीं किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में कहीं ना कहीं लगा हुआ है, तो मन तो एक ही है। अगर वहां लगा हुआ है बच्चा तो एक ही है, अगर वो कहीं खेल में लगा हुआ है तो ट्यूशन कौन पढ़ेगा, उसी बच्चे को वहां से हटा करके ट्यूशन पढ़ने में लगाना पड़ेगा। इसी तरह से मन तो एक ही है, अगर ये कहीं व्यर्थ में लगा हुआ है, किसी व्यक्ति में उलझा हुआ है, तो अब शिव बाबा को याद कौन करेगा, तो इसको वहां से हटा करके फिर बाबा में लगाना है तो योग लग जाएगा। तो मन को देखना पड़ेगा कि ये किसके साथ अटैच्ड है। मन दो बातों में अटैच होता है, एक राग में और एक द्वेष में। एक तो उसके साथ अटैच होता है जिससे उसको बहुत प्रेम होता है, और दूसरा उसके साथ अटैच होता है जिससे उसको बहुत द्वेष होता है, नफरत होती है। वैसे तो वो नफरत वाले को कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुमसे मिलना नहीं चाहता या तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता या मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। लेकिन सच्ची बात ये है कि वो सारा दिन देखता भी उसी को है, मिलता भी उसी से है, बात भी उसी से करता है, जिससे द्वेष होता है। बार बार द्वेष के कारण, नफरत के कारण उसी की तरफ जाता है, उसी का चिंतन करता है। तो एक तो जहां द्वेष है वहां मन बहुत भागता है, और दूसरा जहां राग है, अटैचमेंट है, जहां टू मच प्रेम है, एक्स्ट्रा एक मन वहां भागता है और इसमें संतुलन बिगड़ता है। अगर किसी एक से बहुत अटैचमेंट होगी, पलड़ा एक तरफ बहुत झुका हुआ होगा, तो जरूर किसी ना किसी से नफरत भी होगी, पलड़ा कहीं ना कहीं उठा हुआ भी होगा। तो इसका संतुलन अगर बनाए तो संतुलन कैसे बनेगा? संतुलन है ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, सबके साथ समदृष्टि, समभाव, सब आत्माएं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब भाई भाई हैं। जो मेरी महिमा करता है उसका भी भला हो, जो मेरी ग्लानी करता है उसका भी भला हो। जब ये भावना मन में आ जाती है तो पलड़ा कहीं भी झुकता नहीं है, और जब ये भावना मन में आ जाती है तो हम मन के मालिक बन जाते हैं। नहीं तो मन कभी हमें एक तरफ झुका देता है, बुद्धि उसके प्रभाव में आके कभी दूसरी तरफ झुक जाती है। लेकिन जब बुद्धि शक्तिशाली है तो वो मन को दोनों में से किसी भी स्थिति में अटैच नहीं होने देती है, दोनों अवस्थाओं से उसको बचा के रखती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा राजा हूँ, मन मेरा मंत्री है। स्वमान की सीट पर बैठेंगे तो बाबा कहते हैं मन आपका कहना मानेगा। स्वमान की सीट, आत्मा का सिंहासन, जब कोई भी व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है तो उसके कर्मचारी उसका कहना मानते हैं, और जब वो सिंहासन से उतर जाता है तो कर्मचारी उसका कहना मानना भी छोड़ देते हैं। तो प्यारे बाबा ने हमको बहुत सुंदर सीट दी है, अकाल तख्त दिया है, अविनाशी सीट दी है, इसी को हम एडम ब्लॉक भी कह सकते हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से चलता है, आज्ञा चक्र है, ये सारी आज्ञाएं यहाँ से ही दी जाती हैं, और ये मुक्ति का द्वार भी है। तो बाबा कहते हैं आप अपनी सीट पर बैठो, आपको कुछ नहीं करना, फिसलो नहीं सीट से। जब आप सीट पर बैठेंगे तो मन भी और इंद्रियां भी सब आपके वश में हो जाएंगे, और प्रकृति के भी आप मालिक बन जाएंगे। बाबा हम बच्चों को इसी ऊंची स्थिति में देखना चाहते हैं। सतयुग में हम बच्चे मन के भी मालिक हैं, प्रकृति के भी मालिक हैं, उसकी रिहर्सल हमको अभी करनी है। जैसे एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा डॉक्टर बन करके, लेकिन इंजेक्शन बनाने की रिहर्सल, उसकी प्रैक्टिस पढ़ते पढ़ते करता है। कोई व्यक्ति मंच पे गीत गाएगा लेकिन उसकी रिहर्सल वो मंच पर जाने से पहले करता है। इसी प्रकार से सतयुग तो फाइनल शो का स्थान है, लेकिन उससे पहले हमको संगम युग पर बार बार मन को चेक करना, चेंज करना, दिशा देना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मनुष्य जितनी अधिक प्रैक्टिस करता है वो परफेक्ट बनता है। अगर प्रैक्टिस ढीली है, केवल सोचता है, करता नहीं है, तो परफेक्ट नहीं बनता है। इसलिए कहते हैं कि एक पतली सी रस्सी बार बार आती है जाती है, तो एक शिला के ऊपर निशान कर देती है, एक मिट्टी का घड़ा जहाँ रखा जाता है उस पत्थर के ऊपर वो गड्ढा कर देता है। और मनुष्य जिस बात की बार बार प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, उसमें मास्टर बन जाता है। गीता में एक श्लोक है, अर्जुन ने कहा कि भगवान ये मन तो घोड़ों से भी अधिक तेज है, वायु से भी अधिक तेज है, चंचल है, मैं इसको कैसे वश में करूं? तो भगवान ने कहा अभ्यासेन तू वैराग्येन, एक अभ्यास के द्वारा और दूसरा वैराग्य के द्वारा। तो अभ्यास तो ये करना है कि मैं आत्मा राजा हूँ, मन की मालिक हूँ। और वैराग्य किससे करना है? बाबा ने हम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया है, हमें इस सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है, इस सारी पुरानी दुनिया से अंदर से डिटैच होना है। जैसे कई बार हम देखते ही हैं कि चीज अंदर से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, टूटी पड़ी है, लेकिन ऊपर से उसको लेप लगाया होता है तो ऊपर से देखने में लगता है ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसको जरा सा भी झटका लग जाए तो वो टूट जाती है। और एक दूसरी स्थिति है जिसमें हम देखते हैं कि चीज अंदर से बहुत मजबूत होती है लेकिन ऊपर का जो कवर होता है वो थोड़ा सा फट जाता है या थोड़ा सा जीर्ण हो जाता है। तो ऊपर से देखने में लगता है कि ये चीज बहुत ही कमजोर होगी। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया के साथ आपका जो नाता है वो कैसा होना चाहिए? अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है, अटैचमेंट नहीं है, इच्छा नहीं है, आकर्षण नहीं है, लेकिन ऊपर का लेप लगा हुआ है क्योंकि हम इस दुनिया में रह रही हैं, रिश्ते निभाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो ऊपर से साबुत नजर आता है लेकिन अंदर से बिल्कुल डिटैच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर से तो गहराई तक जुड़े हुए हैं और बाहर से देखने में दिखाते हैं कि हम डिटैच, क्योंकि जब अंतिम परीक्षा की घड़ी आएगी, झटका लगेगा, तो उसमें अगर डिटैच होंगे तो सेकंड में डिटैच हो जाएंगे। और अगर अंदर से गहरे जुड़े हुए हैं और ऊपर का दिखावा है तो उस समय पेपर में क्या रिजल्ट निकलेगी, डिटैच नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्यारे बाबा मुरली में बहुत सुंदर शब्द यूज करती हैं, तोड़ निभाना है। ये बहुत गहरा शब्द है, बिल्कुल तोड़ दिया है लेकिन बहुत प्यार से निभा रहे हैं। टूट गया है लेकिन रूहानी प्रेम के साथ, कर्तव्य के साथ, श्रीमत के साथ निभा रहे हैं। तो ये वैराग्य होगा, अंदर से डिटैच है लेकिन वास्तव में सेवा अर्थ, ज्ञान दान अर्थ, प्रेम से मिलजुल के रहते हैं, निभाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को इस दुनिया में न्यारा और प्यारा रहने की बहुत सुंदर विधि दी है। उस विधि में सिद्धि तब मिलेगी जब बार बार मन के चिंतन को, मन की चलन को चेक करेंगे और उसको दिशा देंगे, उसको ढीला नहीं छोड़ेंगे, उस पर अटेंशन देंगे। ऑप्शन
भरा होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान।
मैं हूँ